कृपा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे
ओम शांति। आज का टॉपिक है आध्यात्मिकता का सौंदर्य और मर्यादाएं। विश्व में लोग सौंदर्यता के लिए बाह्य सौंदर्यता के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों की सौंदर्यता मर्यादाओं में रहकर यही हमारी असली सौंदर्यता है। तो हमने सारे विश्व को क्या चैलेंज की है? प्रश्न। हमने सारे विश्व को यह चैलेंज किए कि हम पवित्र बाप के बच्चे पवित्रता के बल से विश्व को पवित्र बनाकर दिखाएंगे। ये हमारी चैलेंज है। स्वर्ग की चाबी पवित्रता है। पहला धर्म पवित्रता है। पहली मर्यादा पवित्रता है। जैसे देखा जाता है कभी कभी कोई भाई बहने आपस में बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं, तो उसका असर दूसरे पर यही होता है कि ये तो दिन भर आपस में हंसते बहलते हैं। चाहे आपने आपस में बैठकर ज्ञान की रूहरहान ही क्यों ना की हो, लेकिन दूसरों ने तो ये नोट कुछ अलग नोट किया। तो इससे ब्राह्मण कुल में बदनामी होती है। इसलिए इस बात को बड़ी ध्यान से सोच समझकर पालन करना है। अपवित्रता की अविद्या हो, क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ही नया है, पवित्र जीवन है। अपवित्रता आपके पास जन्म की बात थी, अभी यह आपका मरजीवा जन्म है। इसीलिए किसी से भी एक पैसे का अटैचमेंट नहीं हो, किसी से एक पैसे का भी अटैचमेंट नहीं हो तो ही न्यारे और प्यारे बन सकेंगे। न्यारे और प्यारे बनना माना पवित्र रहना। पवित्रता सिर्फ बाह्य नहीं, अंदर से पवित्र। तो अगर माताओं में भी मोह है तो भी अपवित्रता है। क्यों? क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। इसलिए ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमार, ना अधर कुमार, ना अधर कुमारियों में, किसी में भी आपका मोह नहीं हो। ब्रह्मा बाप ने अगर इतनी गालियां खाई तो किस कारण? पवित्रता के कारण। बाबा ने ऑफिशियल इशारा दिया है क्या? सावधान, होशियार। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ब्राह्मण है, सेवाधारी है, सरेंडर है या प्रवृत्ति में है, कोई भी इससे बच नहीं सकते। चाहे कुमार या कुमारी मधुबन में है या सेंटर में है, कोई भी इससे छूट नहीं सकते। धर्मराज नहीं छोड़ेगा और फिर ब्रह्मा बाप भी उसमें उसका साथ देगा। अपवित्रता की बात अगर संकल्प मात्र में भी आए, संकल्प मात्र में भी चोट आए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो ना संकल्प में हो, ना वृत्ति में हो, ना दृष्टि में हो। जब संकल्प में ही नहीं होगा तो वृत्ति और दृष्टि क्या बात है? कोई कोई कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़े बहुत से क्या होता है। तो थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ी बहुत बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो गीत है ना, पवित्र मन और पवित्र तन। तो इस गीत में यही बताया है ना कि मन पवित्र तो जीवन पवित्र। तो अपवित्रता की तो बात ही नहीं आती फिर, अगर यही गीत सदा अपने मन में रखे तो। इसीलिए न्यारे और प्यारे और पवित्रता को अपने साथ रखकर चलना है। तो ये बात कैसी है? सफेद कागज में कागज, सफेद कागज में काले दाग की तरह है। फिर दूसरा है, कुमार, कोई कुमार के घर में क्लास है, बहन उधर क्लास कराने जाती है, या फिर कुमार और कुमारी आपस में बैठकर बातें करते हैं, तो देखने वाले बोलेंगे कि ये क्या है। तो ये भी हमारी मर्यादा नहीं है, हमें इसमें बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। जो भी इस बात को थोड़ा भी लीक करता है तो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होता है। इसलिए इस मर्यादा को हमेशा याद रखना है। मर्यादा को फॉलो करना ही अपने ज्ञान का नियम है। इसीलिए जितना हम इस मर्यादा को फॉलो करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। इससे हम क्या करे होंगे? इस मर्यादा को फॉलो करेंगे तो हम क्या होंगे? मायाजीत बनेंगे, फरिश्ते बनेंगे। फिर तीसरा है अन्न, अन्न खान पीन की मर्यादा। बाबा को भोग लगाकर शांति से बनाना भी है भोग और खाना भी है हमेशा। जो निमित्त टीचर्स है, समर्पित बहनें हैं, उनको पहले बाबा को भोग लगाना है, फिर ही खुद स्वयं भोग स्वीकार करना है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं, जो खुद खाना नहीं बना सकते, या फिर जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या उनके घर में बहुएं हैं, उन्होंने एक रोटी भी पकाकर बाबा को खिलाना है, या वो भी पॉसिबल नहीं है तो एक फल मंगाकर पहले बाबा को खिलाना है, फिर स्वयं खाना है। ये भी विधि है। जब तक बाबा के मंदिर में भोग नहीं चढ़ेगा तब तक खुद को खाना नहीं है, नहीं तो वो योगी भी नहीं है, ना वो टीचर है। फिर चौथा है संग की मर्यादा। जैसा संग वैसा रंग। तो संग दोष से दूर रहना है, मायावी लोगों से दूर रहना है, वो बाद में आएगा। संग दोष से दूर रहना है, मायावी लोगों से दूर रहना है, नित्य सत्य बाप से ज्ञान लेना है, और ज्ञानी आत्माओं से और महान आत्माओं के संबंध संपर्क में रहना है। आप घर में आपस में बैठे हैं और आप घर में आपस में बैठते हैं तो आपस में बैठकर व्यवहार की, शादी मुरादी की, व्यर्थ की, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आपको कौन सी बातें करनी है? इन्वॉल्व ही नहीं होना है उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सामने से भी आवे बताने में तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर कोई कितना भी संग दोष में लाने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो, इग्नोर करने की कोशिश करो। 3 मिनट में मिल जाता तो 3 मिनट ज्ञान बाबा की याद में बैठ जाओ, तो वो दोबारा कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए इस सब से आपको अपने घर का वातावरण भी नहीं बिगाड़ना है, इन सब से आप जवाब देने से बच जाएंगे, आपका समय बच जाएगा, आपकी मन की स्थिति खराब नहीं होगी, आपकी शक्तियां बच जाएंगी और आप खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे। फिर पांचवा है देवी गुण धारण करना है। देवी गुणों की धारण करेंगे तो यही हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, सच्चा धर्म है हमारा। फिर छठा है ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा, कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि हम तो बाबा के बन गए हैं, हमें तो यही रहना है, हम अपना धंधा आदि छोड़कर यही रह जाएंगे। तो बाबा ने इसका सख्त मना किया है, आपको अपना धंधा आदि करके बाबा की सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा करनी है मर्यादा में रहकर। कैसे? कोई कोई डबल टीचर्स होते हैं, जो प्रवृत्ति भी संभालती है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने भी जाती है और फिर घर में क्लास भी लेती है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा चुस्त होने की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी अपना धंधा आदि ना छोड़े, धंधा आदि संभाल कर सेवा करते रहे। कोई धंधा छोड़ेंगे तो और ही सुस्त हो जाएंगे, तो कभी टांग, कभी बाह, कभी कोई और अंग बैठ जाएगा, चलाएंगे तो चलेगा, बिठाएंगे तो बैठ जाएगा। इसीलिए हमेशा शरीर निर्वाह तक तो कर्म करना ही है। फिर सातवा है डिजिटल मर्यादा। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। जितना इन सब चीजों में इंटरेस्ट कम होगा उतना बाबा से प्यार होगा और फिर योग बढ़ेगा। फिर कभी भी किसी को मन वचन कर्म से या क्रोधवश दुख नहीं देना है ना लेना है। हमेशा देवी गुण धारण करने हैं, रॉयल रहना है, किसी को मांगना नहीं है। मांगने के लिए बाबा ने सख्त मना किया है, बाबा की श्रीमत है, कभी किसी से कुछ भी मांगो नहीं, कुछ भी अड़चन आए तो भी मांगो नहीं, बाबा की श्रीमत है ये। नियम अनुसार ज्ञान दो, जो बाबा ने बीज बोने के लिए कहा है वो ज्ञान देना है, लेकिन मांगने की दरकार नहीं रखनी है, इसलिए बाबा ने सख्त मना किया है। दूसरा है कि कोई भी आप मन में सेवा भी उस भाव से करते हो कि कोई हमें देवे, ये भी गलत है। कुछ भी ऐसा मन में सोचकर सेवा नहीं करनी है। बाबा ने कहा है सूखे चने खाकर रह लो, लेकिन किसी के पैसे पर नजर नहीं डालो। फिर है भंडारी। बाबा ने जो भी भंडारी से आपको मिला है, बाबा के भंडारी से जो भी आपको मिला है उसे संतुष्टता से स्वीकार आपको करना है। गीता पाठशाला जो भी चलाते हैं भाई बहने, उनके लिए गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों का संबंध निमित्त सेवा केंद्र की निमित्त टीचर से ही हो, भंडारी का हिसाब किताब निमित्त टीचर से ही हो, हर एक स्टूडेंट का लेना देना टीचर से हो। यदि आपको गीता पाठशाला में सेवा अर्थ कुछ खरीदना है या फिर कोई प्रदर्शनी आदि करनी है तो पहले टीचर्स को बताकर ही करना है। फिर भंडारी का पैसा, भंडारी का पैसे का हिसाब किताब तो टीचर के पास ही रहेगा और उसका हक सिर्फ और सिर्फ समर्पित भाई बहनों का ही है, प्रवृत्ति वालों का उस पर कोई हक नहीं है, उन्हें अपनी खुद की मेहनत करनी है। कोई भी अपना शरीर निर्वाह अर्थ उसे खर्च नहीं कर सकता। फिर है रॉयलिटी। बाबा ने हमें बहुत रॉयल बनाया है, इसलिए ना कभी मांगो किसी से, क्योंकि ज्ञान रॉयल है, ज्ञान रॉयल है, पढ़ाई रॉयल है, इसलिए किसी के लिए, किसी पैसों के लिए, कोई पैसों के लिए अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़नी है आपको। फिर है बिजनेस, बिजनेस वालों के लिए। दो विद्यार्थी में कभी भी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है। क्यों? बाबा ने सख्त मना किया है। क्यों? किसी भी कारण से पैसों का लेन देन नहीं करना है। विद्यार्थी, ब्राह्मणों को पैसों का आपस में लेन देन नहीं करना है। फिर बिजनेस में अधिक फायदा हो इसीलिए किसी को ठगना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, झूठ इतना भी नहीं बोलना कि खुद गिर जावे, अपना ईमान बेचना पड़े। इसीलिए पैसा उतना ही कमाओ जितना आवश्यक है। बाबा ने कहा है कि कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी का नुकसान हो ना और खुद का भी नुकसान हो। बाबा ने बोला है कि कभी भी किसी को ठगो नहीं। फिर है युगलों की, युगल के लिए मर्यादाएं कही है। जहां युगल रहते हैं वहां का वातावरण शांतमय, योगमय और ईश्वरीय मर्यादाओं में फॉलो कर रहना है। विश्व की तरह, दुनिया की तरह जैसे युगल है, हंसी मजाक करके हल्के होकर रहते हैं, वैसे नहीं रहना है। मर्यादा में रहना है, मर्यादाओं का पालन करना है। मर्यादाओं का अगर पालन नहीं करेंगे तो सेंटर में आने वाले लोग कहेंगे ये तो हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, खाते पीते सोते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, तो ये तो गृहस्थी वाइब्रेशन है। तो गृहस्थी वाइब्रेशन को बिल्कुल समाप्त करो, ऐसा बाबा ने कहा है। बिल्कुल उसकी बास ना आए, गृहस्थ वाइब्रेशन की बिल्कुल बास ना आए। माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं ना, इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना आप फॉलो करेंगे आपको देखकर दूसरे फॉलो करेंगे, इसे ही सच्चा सच्चा ब्रह्मचारी कहा जाएगा। फिर दूसरी पॉइंट है इसमें कि आपने शिव बाबा को घर में बुलाया, बिठाया, तो इसका मतलब है कि आपका घर शिवालय हो गया। शिवालय को कभी अशिवालय नहीं बनाना है। अशिवालय बनाना माना क्या क्या बातें आ गई उसमें? उसमें बातें आ गई कि मनसा, पुराने संस्कारों की बात, प्रवृत्ति आदि की बात, मन, वचन, कर्म, इन सब से दूर। तो शिवालय माना सच्चा सच्चा प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वो है शिवालय। इसे ही हम दूसरे महान आत्माओं को चैलेंज कर सकेंगे और अपना घर को शुद्ध कर सकेंगे। फिर इसी में पॉइंट है कि प्रवृत्ति में चार मेंबर है, तीन मानते एक नहीं मानते हैं, तो उसे भी प्रेम से समझाना है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो बाबा ने बोला है कि झगड़ा मत करो। फिर कोई कोई बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों की शादी नहीं करनी है, तो भी झगड़ा पड़ेगा, इसलिए युक्ति से चलना है। कभी कभी कोई कोई कहते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम शादी मुरादी में नहीं जाएंगे, तो कोई मूंछते भी है, तो इस ऐसे अवसर पर जाना भी पड़े तो सेवा समझकर जाना है। ऐसे नहीं कि बहुत श्रृंगार करके, सुंदर बनकर, गहने आदि पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाना है। बहुत सज धज कर जाएंगे तो बुरा लगेगा, और एकदम सफेद साड़ी पहनकर जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। इसीलिए अगर प्रवृत्ति में रहते हैं तो तोड़ निभाना है। भले सफेद, एकदम सफेद कपड़े नहीं पहने, हल्के रंगीन कपड़े पहने तो भी चलेगा, जो प्रवृत्ति में रहते उनके लिए। फिर शादी में गए हैं तो लेन देन तो होगा ही, संबंधी, नजदीकी संबंधियों की अगर शादी है तो लेन देन की बात उठती है, तो उसमें भी निमित्त मात्र आपको निभाना है। ये सारी बातें जो है आपको निमित्त मात्र करनी है, इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, बस निमित्त है, इस ध्येय को आगे रखते हुए चलना है। तो गिफ्ट देना है तो बाबा की ऐसी कोई चीज बनाकर दो जिसे उनको या हमेशा यादगार रहे, अपने हैसियत के हिसाब से चांदी या सोने का छोटी सी कोई चीज ऐसे बना के दो जिसमें शिव बाबा की यादगार है, तो वो भी सेवा का काम करेगी फिर आपका। इसलिए बाबा ने कहा है कि तोड़ो तो तोड़ नहीं देना है, और ऐसा भी नहीं कि पूरा ग्रस्त हो जाना है, आपको निमित्त मात्र निभाना है, जितना मुक्त हो सको उतना अच्छा है। फिर कभी रोना नहीं है, कभी मूड ऑफ नहीं करना है, कभी रूसना नहीं है। जैसे बाबा ने ज्ञान के शीतल छींटे हम पर छिटके हैं, डाले हैं, वैसे हमको सब पर शीतलता की नजर से देखना है और उनको शीतलता के वाइब्रेशंस देना है। फिर प्रवृत्ति मार्ग में हमेशा प्योर वाइब्रेशंस और शांति के वाइब्रेशंस सबको देने हैं, ताकि वो अपने आप ही शांत हो जाए और आप पे कोई असर ही ना हो, आप तक वो बात आए ही नहीं। फिर है एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से, स्नेह से, प्यार से रहना है। दो भाई बहनों को, भाई भाई को स्नेह से सेवा भी करनी है और प्यार से भी रहना है। फिर बड़ों का रिगार्ड रखना है, छोटों से स्नेह रखना है। नाम रूप में फंसना नहीं है, कुल कलंकित नहीं बनना है, देवी गुण धारण करना है, देवी मैनर्स रखने हैं अंदर। फिर किसी के नाम रूप में फंसना भी नहीं, ना दुख देना है ना दुख लेना है, कुछ ऐसे बोल भी नहीं बोलने हैं जिसे दुख हो और अपने आप को भी उसके बाद अफसोस हो कि हमने ऐसा क्यों बोला। फिर है हमेशा चलन अपनी रॉयल रखनी है, हर चीज में रॉयल रखनी, क्योंकि बाबा ने हमें रॉयल बनाया, ये जन्म ही हमारा बहुत रॉयल है। संगम युग का हर एक समय संतुष्टता और रॉयलिटी से भरा है, इसीलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जो भी ब्राह्मण इन सारी बातों को 20 नखूनों से पालन करेगा उसकी बहुत महिमा होगी, और जो भी इसमें थोड़ा भी लूज हुआ तो बदनामी ही बदनामी होगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमेशा सौंदर्यता से मर्यादा को पालन करो तो बचे रहेंगे। हाँ, तो 16 श्रृंगार बताया है। पहला है चिंदी, चंदन समान खुशबू फैलाने वाली चंदन की चिंदी। फिर है तिलक, स्वस्मृति व पद्मापदम भाग्य का मस्तक पर तिलक। तीसरा है ताज, पवित्रता की लाइट और बेहद सेवा की जिम्मेदारी का ताज। पवित्रता की लाइट और बेहद सेवा की जिम्मेदारी का ताज। फिर काजल चौथा, सदा रूहानियत व भाई भाई की स्मृति का नयनों में काजल। फिर पांचवा है कुंडल, सदा तुम ही से सुन तुम्हारा ही सुन इस प्रतिज्ञा के कानों में कुंडल। फिर छठा है नथनी, एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति की नाक में नथनी। सातवा है चमक, सूरत में बाप दादा की सीरत का साक्षात्कार करने वाली रूहानी चमक। आठवा है लाली, होठों पर मधुर बोल व मुस्कुराहट की लाली। नौवा है माला, विजयी रत्न बनने की गले में वैजंती माला। दसवा है अंगूठी, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए अष्ट शक्तियों की अंगूठी। ग्यारहवा है कंगन, पवित्रता की प्रतिज्ञा का हाथों में कंगन। बारहवा है बाजूबंद, सदा मददगार व सेवादारी रहने का बाजूबंद। तेरवा है करधनी, कमर में दृढ़ता अथवा दृढ़ संकल्प की करधनी। चौदहवा है पायल, खुशी से सदा नाचने की निशानी, पाँव में घुंघरू व पायल। पंद्रहवा है बिछुए, कदम के पीछे कदम रखने व सदा श्रीमत पर चलने की बिछुए। सोलहवा है ड्रेस, सदा दिव्य गुणों से संपन्न चमकीली फरिश्ता ड्रेस। तो ऐसे है सोलह श्रृंगार, चिंदी, तिलक, ताज, काजल, कुंडल, नथनी, चमक, लाली, माला, अंगूठी, कंगन, बाजूबंद, करधनी, पायल, बिछुए, ड्रेस, सोलह श्रृंगार। अच्छा, ओम शांति।